नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत और भूटान जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, वन और वन्यजीव प्रबंधन के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। नेपाल में भूस्खलन के कारण दो बसें नदी में बह जाने से 7 भारतीय नागरिकों सहित 60 से अधिक लोग लापता। घरेलू शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, सेंसेक्स 80,800 अंक जबकि निफ्टी 24,500 के पार। और लंदन में विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज का मुकाबला आज शाम डेनियल मेदवेदेव से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारत और भूटान पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता, वन वन्य जीव प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। भूटान के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री जेम शेरिंग के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति सिंह वर्धन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने वायु गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन, वन प्राकृतिक संसाधन, वन्य जीवन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। श्री सिंह ने भारत की वैश्विक पहल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने पर भूटानी मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देश समान भौगोलिक पारिस्थितिकी तंत्र और लोकतंत्र के समान मूल्यों में विश्वास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को बड़ी खंडपीठ को भेज दिया। हालांकि श्री केजरीवाल अभी हिरासत में ही रहेंगे क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आबकारी नीति मामले में ही भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने श्री केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लोगों और मीडिया को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा,
आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ सारे के सारे तथ्य हैं।
इस बीच आम आदमी पार्टी ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। पार्टी प्रवक्ता संदीप पाठक ने मीडिया से कहा कि फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कथित आबकारी नीति मामला भाजपा द्वारा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने इस मामले को समाप्त कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली के मूल्यों में वृद्धि के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए और तख्तियां लहराते हुए आईटीओ पर प्रदर्शन किया। बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली खरीद समायोजन शुल्क को 6.75 से बढ़ाकर 8.75 कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के बेल्लारी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित घोटाले की जांच के लिए आज सुबह बेंगलुरु में हिरासत में लिया गया। इस घोटाले में 187 करोड़ रूपये की धनराशि अवैध रूप से हस्तांतरित की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में कल कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 20 स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद आज पूर्व मंत्री को पूछताछ के लिए निदेशालय ले जाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मुंबई में नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के संकाय और छात्रों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने सशक्त भारत, विकसित भारत 2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका शीर्षक पर चर्चा में मुख्य भाषण दिया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के कदमों और पहलों से युवाओं के हित में बड़ा बदलाव आया है।
India's rise is like a plateau. That plateau is defined because road connectivity to the villages, toilets, har ghar mein nal nal mein jal, digitization of the village, all the electricity. And now a new concept has come. You power yourself because government has come out with a scheme of solar power for every home.
ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newzoneair पर भी उपलब्ध हैं। नेपाल में चितवन जिले के नारायणघाट मुगलिंग सड़क मार्ग पर सिमलताल क्षेत्र में यात्रियों को ले जा रही दो बसें भूस्खलन के कारण आज सुबह त्रिशूली नदी में गिर गईं। एक रिपोर्ट।
चितवन जिले के नारायणघाट मुगलिंग सड़क खंड सहित सिमलताल क्षेत्र में भूस्खलन के कारण आज सुबह यात्रियों को ले जा रही दो बसें त्रिशूली नदी में गिर गई। इन दोनों बसों में कुल 65 यात्री सवार थे। चितवन के मुख्य जिलाधिकारी इंद्रदेव यादव ने पुष्टि की है कि आज सुबह 3:30 बजे दो वाहन नदी में गिरे। नेपाल पुलिस के अनुसार काठमांडू से रौतहट के गौर जा रही एक बस में 41 लोग सवार थे और बीरगंज से काठमांडू जा रही दूसरी बस में 24 लोग सवार थे, जिनमें 7 भारतीय भी शामिल थे। नेपाल सशस्त्र पुलिस बल के आपदा प्रबंधन दल के साथ गोताखोर बचाव अभियान चला रहे हैं और बचाव कर्मी सड़क मार्ग बहाल कर रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने ट्वीट किया है कि वे इस घटना से बेहद दुखी हैं और उन्होंने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रिका जोशी।
नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड आज संसद में 5वीं बार विश्वास मत परीक्षण का सामना करेंगे। श्री दहाल के लिए विश्वास मत हासिल करना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में नेपाली कांग्रेस के 88 सदस्य और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के 79 सदस्य हैं। उधर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर के पास केवल 32 सदस्य हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना चुनाव के दौरान राज्य में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान और निकट भविष्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि विंझीजम बंदरगाह देश में समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि देश में विश्व स्तरीय बंदरगाह बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। केंद्रीय मंत्री आज तिरुवनंतपुरम में विंझीजम बंदरगाह से पहले कंटेनर जहाज सैन फ्रांडो के आगमन के आधिकारिक स्वागत कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD की परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने पर जोर दिया है। नई दिल्ली में 170वें CPWD वार्षिक दिवस पर एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने परियोजनाओं में अधिक पारदर्शिता और कम लागत की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय ने LLB पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को शामिल करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के अकादमिक परिषद में ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने उन्हें बताया है कि ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें किसी भी ग्रंथ के विवादास्पद हिस्से को शामिल करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। महाराष्ट्र विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा और इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। नीट पेपर लीक मामले में हजारीबाग के ओएसएस स्कूल के प्रधानाचार्य एहसानुल हक और उप प्रधानाचार्य इम्तियाज सहित 4 लोगों को सीबीआई की रिमांड पूरी होने के बाद पटना के बेउर जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने 28 जून को इन्हें गिरफ्तार किया था। जांच से पता चला कि पटना में खेमनीचक प्ले स्कूल से जब्त आंशिक रूप से जले प्रश्न पत्र राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से प्राप्त प्रश्न पत्र से मिलते हैं। इस प्रश्न पत्र की श्रृंखला को हजारीबाग के कल्लू चौक में स्थित ओएसएस स्कूल के परीक्षा केंद्र पर भेजा गया था। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की रिपोर्ट आज से आम जनता के लिए उपलब्ध है। नियम और कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा ने रिपोर्ट जारी की। ये चार खंडों में उपलब्ध है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वेबसाइट www.ucc.uk.gov.in पर उपलब्ध है। गुजरात में राज्य सरकार ने किसानों को बागवानी में उन्नत प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए राज्य में चार नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। राज्य के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि बागवानी उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए फसलों और बागवानी में आधुनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। केरल में तिरुवनंतपुरम में पिछले 10 दिन हैजा के 5 और मामलों में वृद्धि हुई है। हैजा के मरीजों की संख्या 7 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने हैजा रोकने के लिए एहतियाती और निवारक उपाय किए हैं। तिरुवनंतपुरम के नैया तिनाकारा में विशेष स्कूल छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों में हैजा की पुष्टि हुई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रकोप के कारणों की जांच करने और इसके प्रसार को रोकने के लिए तत्काल उपाय किए हैं। छात्रावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन 26 जिलों के क्षेत्रों में 2500 से अधिक गांव अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य भर में 39,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फसलें नष्ट हो गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बाढ़ से किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ब्रह्मपुत्र, बूढ़ीदेहिंग, दिसांग और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य सरकार ने 189 राहत शिविर और 110 वितरण केंद्र खोले हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बलों को तैनात किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गुजरात में 100 से अधिक तहसीलों में मध्यम से हल्की बारिश हुई। विभाग ने अगले 3 दिन में दक्षिण और उत्तर गुजरात में हल्की से तेज बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन के दौरान देश के दक्षिण पश्चिम प्रायद्वीपीय हिस्से और पूर्वोत्तर तथा आसपास के पूर्वी क्षेत्रों में बहुत तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम एजेंसी के अनुसार इस महीने की 16 तारीख तक कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, तेलंगाना में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों को भारत की प्रगति का प्रवेश द्वार मानते हैं और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए काम कर रही है। श्री सिंधिया मेघालय और असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर हमारी सदियों पुरानी संस्कृति का भंडार है और केंद्र सरकार विकसित भारत और विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्टार्टअप, उद्यमिता और पर्यटन विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बंबई शेयर बाजार में आज तेजी का रुख है। सेंसेक्स 996 अंक बढ़कर 80,994 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 276 अंक बढ़कर 24,592 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। एशियाई बाजारों में हांगकांग में बढ़त रही, जबकि सोल, टोक्यो और शंघाई के शेयर बाजारों में गिरावट रही। लंदन में विंबलडन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्काराज का मुकाबला डेनियल मेदवेदेव से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच का सामना इटली के लोरेंजो मुसीटिस से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और भूटान जलवायु परिवर्तन, वायु गुणवत्ता, वन और वन्यजीव प्रबंधन के क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमत। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। नेपाल में भूस्खलन के कारण 2 बसें नदी में बह जाने से 7 भारतीय नागरिकों सहित 60 से अधिक लोग लापता। घरेलू शेयर बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, सेंसेक्स 80,800 अंक जबकि निफ्टी 24,500 के पार। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।